लड़कों पे बड़ा प्रेशर होता है सेक्स लाइफ को मतलब अच्छा रखने का. यू नो यू आर नॉट गुड इन बेड, योर पेनिस इज स्मॉल, यू आर नॉट परफॉर्मिंग वेल, यू आर नॉट लास्टिंग लॉन्ग इनफ इन बेड. द काइंड ऑफ प्रेशर्स दैट मेन फेस फ्रॉम देयर मेंटल हेल्थ स्टैंड पॉइंट आर जस्ट नॉट पेड इनफ अटेंशन. एंड प्रॉब्लम ये है कि आज भी हालत एजुकेशन की यही है. पास एक कपल आया तो पिछले 7 साल से दे वर ट्राइंग टू हैव अ बेबी, नहीं काम चल रहा था. टेस्ट वेस्ट करे गए, टेस्ट में सब कुछ नॉर्मल निकला. पिछले 7 साल से ये आदमी अपने वाइफ के बेली बटन में पेनिट्रेट कर रहा था क्योंकि पेट में छेद है, बच्चा पेट से आता है.
ओरल सेक्स कैन लीड टू माउथ कैंसर,
बैक ऑफ द थ्रोट कैंसर, ओरोफैरिंजियल कैंसर जिसे हम बोलते हैं.
लेट्स टॉक अबाउट फ्यू प्रोडक्ट्स दैट आर मार्केटिंग गिमिक्स.
वजाइनल वॉश या पीनस वॉश, बॉल वॉश डेडिकेटेड बकवास है. पीनस लेंथनिंग क्रीम, स्पिल सॉल्यूशंस, पीनस का लेंथ नहीं बढ़ाया जा सकता है. जेनिटल डीपिगमेंटेशन या लाइटनिंग क्रीम्स,
वजाइना ब्राइटनिंग क्रीम,
हाँ, लाइटनिंग क्रीम, स्क्रब लोशन, सब कुछ बकवास है, बुलशिट.
इंडिया ना ग्लोबल सेक्सुअल हेल्थ की रैंकिंग में बहुत नीचे आता है. एंड उसका रीज़न है कि हमारी कंट्री में सेक्सुअल हेल्थ के अराउंड अवेयरनेस ही नहीं है, एजुकेशन ही नहीं है ज़्यादा. इसीलिए आज का एपिसोड हमने बनाया, क्योंकि हम सब की हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. हमने एपिसोड बनाया विथ डॉक्टर क्यूट्रिस, डॉक्टर तनाया नरेंद्र, क्योंकि वो ऑक्सफोर्ड से पढ़ के आई सेक्सुअल हेल्थ में. उन्होंने बहुत डेप्थ में रिसर्च करी एंड इंडिया में आके छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को वो सॉल्व कर रही है और उनके बारे में कंटेंट बना रही है ताकि आप और हम सीख के बेटर एंड सेफ प्रैक्टिसेस में इंडल्ज करें. इनफैक्ट उन्होंने हमसे बात करी है कि इंडिया में कौन सी मिथ्स हैं, इंडिया में गलत बातें लोग क्या मानने लग जाते हैं, कैसे एक स्कैम चल रहा है, कैसे एक बहुत बड़ा मार्केट है जहाँ पर लोग डरा के, धमका के, लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन की वजह से बहुत बड़ा धंधा कर रहे हैं. एंड उन सब में क्या गलत है और क्या सही है, इन सब के बारे में बात करिए आज के एपिसोड में. वेरी इंपॉर्टेंट एपिसोड, क्योंकि आपको ये देखना इम्पॉर्टेंट है कि आपकी हेल्थ को आप कैसे बेटर कर सकते हैं, कैसे बेटर प्रैक्टिसेस सॉल्व कर सकते हैं, लीगल क्या है, इलीगल क्या है, और अगर कुछ कभी गलत हो जाए तो उसको सही तरीके से सॉल्व कैसे कर सकते हैं. इन्जॉय टुडेज शो. एंड बिफोर यू इन्जॉय, राज शमानी क्लिप्स एंड राज शमानी शॉर्ट चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि वहाँ पर हम इस बड़े एपिसोड की छोटी छोटी क्लिप्स में आपको एक बेहतर लीडर बनाने की कोशिश करते हैं. एंजॉय द शो.
यू नो वन थिंग व्हेन यू रीड अबाउट दिस कंट्री बहुत ज़्यादा, दैट इज फर्टिलिटी सेंटर्स बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं इंडिया में, राइट. और इंडिया का ओवरऑल जो परसेंटेज है इनफर्टिलिटी का ऊपर जाते जा रहा है. पीपल आर नॉट हेल्दी इनफ, इफ दैट्स अ वर्ड, और या तो आई डोंट नो व्हाट्स द वर्ड फॉर इट, बट पीपल आर नॉट इक्विप्ड इनफ टू नाउ हैव अ बेबी. और ये बहुत बढ़ते जा रहा है कंट्री में, बहुत सारे सेंटर्स खुलते जा रहे हैं, बहुत सारे लोग सोसाइटीज में ये बढ़ते जा रहा है, राइट. एंड इट हैज़ बिकम इफ नॉट वेरी कॉमन बट सम वॉट लेवल पे हर कोई, हर किसी की फैमिली में किसी ना किसी को कुछ ना कुछ पता है. इट हैज रीच टू दैट लेवल. व्हाई डू यू थिंक कि इनफर्टिलिटी क्यों बढ़ते जा रही है, फ्रॉम अ मेन पर्सपेक्टिव एंड फ्रॉम अ वुमेन पर्सपेक्टिव, बोथ?
जो एक तो सबसे बड़ा सोसाइटी पर्सपेक्टिव है कि पहले इन चीजों के लिए डॉक्टर के पास नहीं जाते थे लोग क्योंकि ऑप्शन ही नहीं थे. पिछले 50 साल में IVF का ऑप्शन आया है. उससे पहले होता था ठीक है भाई बांझ है तो या तो दूसरी शादी कर लो या बच्चा गोद ले लो.
बांझ मतलब
इनफर्टाइल है.
ओके.
एंड ये जनरली माना जाता है कि फर्टिलिटी औरतों से आती है, जबकि फर्टिलिटी में हम देखते हैं 40% मेल फैक्टर होता है, 40% फीमेल फैक्टर होता है, 20% अनएक्सप्लेन्ड होता है या कंबाइंड फैक्टर होता है. आई थिंक व्हाट मेन नीड टू रिमेंबर इज द बिगेस्ट थिंग जो हम नहीं ध्यान दे रहे हैं. वन सिंपल थिंग जिससे आप अपनी सेक्सुअल और फर्टिलिटी हेल्थ को रेवोल्यूशनाइज कर सकते हैं, सुट्टा छोड़ सकते हैं. ये बेस्ट और सिंपलेस्ट चीज़ है, बिकॉज स्पर्म के बारे में एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ होती है कि हर 3 महीने पे स्पर्म का नया फैक्ट्री डिलीवरी नहीं आती है, ऐसे समझ लो. अब उसको आप कैसे पॉलिश कर रहे हो, कैसे नर्चर कर रहे हो, कैसे ग्रो कर रहे हो, वो आप पे डिपेंडेंट है. पर हर 3 महीने पे फैक्ट्री रिसेट हो जाता है. तो अगर आपने आज सुट्टा छोड़ा, 3 महीने बाद व्हेन यू गेट योर न्यू फैक्ट्री रीसेट, तो दैट इज़ ऑल न्यू फ्रेश स्पर्म जो आपके पुराने सिगरेट स्मोकिंग से टेंटेड नहीं है. मतलब थोड़ा फर्क पड़ेगा बट इतने ड्रामेटिकली टेंटेड नहीं है. तो एक सिंपल चीज़ छोड़ के हम बहुत फर्टिलिटी इंप्रूव कर सकते हैं. बट अनफॉर्चुनेटली इंडिया में सिगरेट स्मोकिंग इज गोइंग अप, तो स्ट्रेस बढ़ता जा रहा है, बहुत सारे लोग पर्टिकुलरली फॉर मैन जिम में स्टेरॉइड्स बहुत अब्यूज़ करते हैं जिससे टेस्टिकुलर वॉल्यूम और फंक्शन पे फ़र्क पड़ता है। इसके अलावा एक हमारी बहुत बुरी और आदत है लैपटॉप गोदी में रख के काम करना, तो टेस्टिकल्स के लिए लो टेम्परेचर चाहिए होता है। इसी वजह से जब ज़्यादा गर्मी लगने लगती है टेस्टिकल्स बॉडी से दूर हो जाते हैं, लोअर हैंग करते हैं, और ठंडी होती है तो श्रिंक करके ऊपर खिसक जाते हैं। तो बिकॉज वो सेल्फ रेगुलेटिंग एयर कंडीशनिंग सिस्टम है, ऐसे समझ लो उनका, वो मसल्स के थ्रू अपने आप को रेगुलेट करते हैं कि कितना ऊपर, कितना शरीर के क्लोज है, कितना दूर रहना है। बट अगर उसी पे हम लैपटॉप रख के बैठे रहें तो आप दिन भर, वेरी क्रैस एनालॉजी, बट अंडे पका रहे हैं एसेंशियली, यू नो, यू डोंट वांट टू डू दैट। एंड एज आवर लाइफस्टाइल इज गेटिंग वर्स एंड वर्स, वर्क आवर्स बदलते जा रहे हैं, स्ट्रेस बढ़ता जा रहा है जिसकी वजह से सब्सटेंस अब्यूज बढ़ता जा रहा है, और इस स्ट्रेस को लोग जाके जिम में निकालते हैं विच इज़ ग्रेट, बट जिम में गेन्स नहीं दिखते तो फिर स्टेरॉयड अब्यूज़ में चले जाते हैं। इन सिंपल लाइफ स्टाइल फैक्टर्स की वजह से वी आर रियली पुअरली अफेक्टिंग मैन की सेक्सुअल हेल्थ, सॉरी फर्टिलिटी हेल्थ। एंड एट द सेम टाइम औरतों के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि हमें फर्टिलिटी एजुकेशन नहीं मिलता है, विच इज सो इम्पॉर्टेंट, क्योंकि When you are born, आप एक सेट नंबर, लड़कों की तरह नहीं है कि हर समय नया बनता रहे, इन एनी गिवन सेकेंड ऑन एवरेज एक आदमी 1500 स्पर्म बनाता है, तो इस पॉडकास्ट के एंड तक पता नहीं कितना बन जाएगा कलेक्टिवली, बट लड़कियों के साथ ऐसा नहीं होता है। आप जब यूट्रस के अंदर होते हैं तो आपके अंदर 2 मिलियन एग्स होते हैं, हाँ, विच इज़ 20 लाख, और जब आप प्यूबर्टी तक आते हैं तो वो 20 लाख से गिर के 4 लाख हो जाता है। इस बीच में तो आप एग्ज यूज नहीं कर पाए, आपकी तो फर्टिल, मतलब बहुत छोटे हैं अभी फर्टिलिटी के बारे में सोचने के लिए। एंड बाय द टाइम आप रिप्रोडक्टिव एज तक पहुंचते हैं, 25-30 साल की उम्र होती है, तो वह 4 लाख से और गिर जाएगा ना, क्योंकि हर महीने शरीर एग रिलीज करती है कि इस महीने बच्चा आएगा, इस महीने बच्चा आएगा, नहीं आता है। और बाय द टाइम यू हिट 32, 34, 35 आपकी फर्टिलिटी बहुत रिड्यूस हो गई होती है, और ये हम नहीं सीखते हैं। हमारे पास कितने मरीज आते हैं 38, 39 पे कि अब हमें एग फ्रीज करना है, जब तक आपका अकाउंट ऑलरेडी इतना ड्रॉप कर चुका होता है। सो फर्टिलिटी एजुकेशन एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, एंड अगर हम टाइमिंग मैनेज कर सकें एग फ्रीजिंग के थ्रू, फर्टिलिटी डिलेइंग प्रोटोकॉल्स के थ्रू, तो हम बहुत सारी इनफर्टिलिटी के कॉजेज मैनेज कर सकते हैं। एंड हियर इज़ द एंड पॉइंट ऑफ द बिगेस्ट थिंग विच गॉट मी इन टू दिस वर्क, क्योंकि मैंने ट्रेनिंग करी थी फर्टिलिटी प्रोसीजर्स में, दैट इज़ ऑल ऑफ माई एजुकेशन आफ्टर MBBS। पर मुझे ये लगा कि फर्टिलिटी के जो मेन कॉजेज है ना, वो प्रिवेंटेबल है एजुकेशन से, चाहे वो सेक्सुअल हेल्थ के लिए एजुकेशन हो, चाहे वो फर्टिलिटी हेल्थ के लिए एजुकेशन हो, क्योंकि इंडिया में इनफर्टिलिटी का एक बहुत बड़ा कॉज है ट्यूबरकुलोसिस और STIs। इतना बड़ा कॉज है इनफैक्ट कि अक्सर छोटे सेंटर्स में जहाँ उनके पास टेस्टिंग की फैसिलिटी नहीं होती है, अगर कोई कपल आता है ना इनफर्टिलिटी के प्रॉब्लम के साथ, तो उनको वैसे भी ट्यूबरकुलोसिस का ट्रीटमेंट शुरू कर देते हैं कि भाई 9 महीने 6 महीने इनको ट्राई, द डिपेंडिंग कौन सा प्रोटोकॉल यूज़ कर रहे हैं, इनको ट्राई करा देते हैं कि शायद ट्यूबरकुलोसिस हो अंडरलाइंग, क्योंकि इंडिया में किसी का भी TB टेस्ट करो पॉजिटिव ही आएगा अगर स्किन टेस्ट करो, क्योंकि इतना एक्सपोजर है हमारा TB से। स्किन, एक स्किन टेस्ट होता है देखने के लिए कि आपका ट्यूबरकुलोसिस से एक्सपोजर हुआ है कि नहीं, इट डजंट मीन कि आपको इन्फेक्शन हुआ है। तो एंड छोटे सेंटर्स में जनरली हम मॉन्टू से ज़्यादा नहीं कर पाते हैं विच इज़ दैट स्किन टेस्ट। तो अगर हमें इसके बारे में एजुकेशन मिले ना, तो ये जो आगे के फर्टिलिटी के प्रॉब्लम्स हैं वो बहुत प्रिवेंटेबल हैं, अगर हम कॉन्डम यूज़ एडिक्वेट सीखें, सेफ सेक्स के बारे में सीखें, सेक्सुअल हाइजीन के बारे में सीखें, तो आगे ये सब प्रॉब्लम्स पहुँचेंगी ही नहीं। पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ जो होती है, जो बार बार पेल्विस या जेनिटल ऑर्गन्स के इन्फेक्शन से होती है, वो नहीं होएगी, तो आपकी आगे की इनफर्टिलिटी के क्वेश्चन ही नहीं उठेंगे। और ऑब्वियसली फर्टिलिटी एजुकेशन की इस समय पर बच्चा करना चाहिए, या सेविंग या यू नो प्रेजर्वेशन के प्रोटोकॉल्स कर सकते हैं। तो इट्स मोर ऑफ अ, ऑब्वियसली यू नो लाइफस्टाइल चेंज हैज हैपेंड, बट आई थिंक इट्स अ वेरी प्रिवेंटेबल प्रॉब्लम, इतने की जरूरत है नहीं जितनी प्रॉब्लम है हमारे यहाँ।
डू यू थिंक कि अपार्ट फ्रॉम जस्ट सब्सटेंस अब्यूज, सिगरेट्स, ड्रिंक, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग एक्सेट्रा, इसके अलावा कोई ऐसी चीज़ है जो लोग कर रहे हैं ऑन अ डे टू डे बेसिस जिसकी वजह से मे बी उनका टेस्टोस्टेरोन लेवल कम हो रहा है या ओवरऑल इनफर्टिलिटी का रीज़न बनते जा रहे हैं?
तो टेस्टोस्टेरोन से हम बहुत ज़्यादा सेक्सुअल पावर वगैरह को लिंक करते हैं, ऐसा होता नहीं है। लो टेस्टोस्टेरोन इतना कॉमन नहीं है जितना हम समझते हैं, और इतना ज़्यादा इम्पैक्टफुल नहीं है। अगर इतना लो टेस्टोस्टेरोन है कि फर्टिलिटी पे फर्क पड़ रहा है तो वो काफ़ी ड्रामेटिक होता है. तो लेट्स नॉट वरी अबाउट दैट इज़ व्हाट आई वांट टू से. काफ़ी सारे इंटरनेट पे हेल्थ ब्रोज बताते हैं कि टेस्टोस्टेरोन बढ़ाने के तरीके, उससे बहुत कुछ होता नहीं है.
वन ऑफ द मोस्ट सर्च्ड टॉपिक इन हेल्थ, हाउ टू इम्प्रूव योर टेस्टोस्टेरोन.
मैंने लिंक्डइन पे देखा, ट्विटर पे देखा था कि किसी डॉक्टर ने अपने किसी रेसिडेंसी एप्लीकेशन में लास्ट में मेंशन किया है कि मेरा ये ब्लड काउंट है, ये मेरा हीमोग्लोबिन, ये मेरा टेस्टोस्टेरोन लेवल है, जस्ट टू शो कि मैं इतना सुपर ह्यूमन एथलीट हूँ. सो इट्स नॉट दैट इंपॉर्टेंट. आई थिंक देयर आर सिंपलर थिंग्स वी नीड टू फोकस ऑन इज व्हाट आई मीन.
एंड यू नो व्हाट यू वर सेइंग बिफोर दिस कि लड़के यूजुअली ओपनली शेयर नहीं कर पाते, दैट्स सो ट्रू. Because I was recently discussing with one of my friends, they were a couple, right? And we were talking about this, about sexual problems, right? And the girl says ki jab bhi mujhe kuch problem hoti hai, bahut openly apni doston se baat kar leti hu, right? It's, she can talk about, hey, maybe we're not having good sex. Hey, maybe, I think I'm not feeling it anymore. Mero, matlab, I'm not getting turned on, mere ko orgasm nahi ho raha, or maybe my guy comes too soon, like, सब पे बात कर लेती हूँ. इट्स वेरी नॉर्मल. लड़के नहीं बात करते, उन्हें लगता है कि यार बात कैसे करेंगे, या तो ईगो होता है या सोसाइटल प्रेशर होता है. गाइस डोंट टॉक अबाउट इट. एंड बिकॉज इफ अगर विमेन का जो लेट्स से एक्सपीरियंस है ड्यूरिंग हर सेक्सुअल जर्नी, वो अप एंड डाउन है, कभी अच्छा है कभी बेकार है कभी नहीं है, राइट, ऑल ऑफ दिस, तो आई एम श्योर वो लड़का भी होगा उसमें इन्वॉल्व, तभी उसका भी अप एंड डाउन, बेटर अप डाउन हो रहा होगा, राइट, बट वो कभी नहीं शेयर करता, कोई बात नहीं करेंगे.
इट्स ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग कि लड़कों पे फिर से अगेन प्रेशर की बात आ जाती है. लड़कों पे बड़ा प्रेशर होता है सेक्स लाइफ को मतलब अच्छा रखने का, कि ऑर्गेज्म देना लड़के की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्लिटोरिस ढूंढना लड़के की, जी स्पॉट व्हाटएवर यू वांट टू कॉल इट, लड़के की रिस्पॉन्सिबिलिटी है. एंड प्रॉब्लम ये है कि इन बेचारे लड़कों को कोई एजुकेशन तो मिली नहीं है, ना हमारी लड़कियों को मिली है ना उन बेचारे लड़कों को मिली है. तो दो कंफ्यूज्ड लोग एक सक्सेसफुल एम के लिए दौड़ रहे हैं और सारा प्रेशर लड़के पे है कि भाई यू नो यू आर नॉट गुड इन बेड, योर पेनिस इज स्मॉल, यू आर नॉट परफॉर्मिंग वेल, यू आर नॉट लास्टिंग लॉन्ग इनफ इन बेड, तुम ग्लिटर्स नहीं ढूंढ रहे हो. मतलब कम प्रेशर है क्या लाइफ में कि साला ये भी प्रेशर और पाल लो.
बट ये प्रेशर तो है एंड ऑनलाइन सोशल मीडिया जैसे तो बहुत बड़ा प्रेशर है. डू यू थिंक इट्स राइट?
No, no, it's absolute bullshit. Don't get me wrong, but I think the kind of pressures that men face from their mental health standpoint are just not paid enough attention. And if they're paid enough attention, तो वो generally comedy के through होता है, troll coping जिसे कहते हैं. Instead of, you know, actually finding solutions or having positive catharsis कि भाई ये problem चल रही है life में, इसको solve कर सकते हैं, solve नहीं कर सकते हैं, थोड़ी देर रो लेते हैं इस बारे में, कोई बात नहीं, अच्छा अच्छा लगेगा उसके बाद. ये point exist ही नहीं करता है.
So tell me, ये किसकी responsibility है to find the G-spot?
G-spot कुछ नहीं होता है.
I mean, okay, wow. ओके, और फीमेल ऑर्गेज्म किसकी रिस्पांसिबिलिटी है दोनों की?
नहीं, आई थिंक हाँ, इट्स सबका, लाइक ऑर्गेज्म इज अ जॉइंट रिस्पांसिबिलिटी बिटवीन अ कपल, चाहे वो फीमेल ऑर्गेज्म हो चाहे वो मेल ऑर्गेज्म.
हाँ, तो ये पूरा ब्लेम जो लड़कों पे बना रखा है वो नहीं होना चाहिए.
बट टू बी ऑनेस्ट, लड़कियों को कौन सा बड़ा पता है उनके शरीर के बारे में? मतलब अगेन, इट्स टू ब्लाइंड पीपल ट्राइंग टू फाइंड समथिंग इन अ रूम वेयर दे डोंट नो व्हाट द रूम इज.
या
And
I love the analogy. There was a, did you hear the recent stand-up comedian did a joke, it's going viral on a reel. He's like ki, I had a sex with my girlfriend and then fir wo mujhe bol rahi hai ki yeah mujhe to orgasm aaya nahi, to bolta maine kaun sa jungle ladni thi, main thodi aaya tha idhar jeetna hai, mujhe batana chahiye tha pehle ki tum agar sign up kar rahe ho to tumhare race mein part liya hai, tumhe race complete karni padegi. ये तो किसी ने बताया ही नहीं.
बट इट्स वेरी इंटरेस्टिंग कि हम ऑर्गेज्म गैप की इतनी बात करते हैं कि यू नो लड़कियों को ऑर्गेज्म एडिक्वेटली नहीं हो रहा है, पर्टिकुलरली हेट्रोसेक्सुअल रिलेशनशिप्स में हम देखते हैं कि कंपेयर टू लेस्बियन रिलेशनशिप्स बहुत सिग्निफिकेंट डिफरेंस होता है कि लड़कियों को ऑर्गेज्म नहीं हो रहा है. ये क्यों है? क्योंकि लड़कों ने तो पॉर्न से सीखा है भाई, जनरली मतलब सबने पॉर्न से सीखा है, और पॉर्न में हमें क्या दिखाते हैं कि ऑर्गेज्म पेनिट्रेशन से होता है, जबकि 80% से ज़्यादा लड़कियों को पेनिट्रेशन से ऑर्गेज्म नहीं होता है. एंड द फन पार्ट इज लड़कियों को भी ये नहीं पता होता है. हर लड़की अपना अकेले कमरे में बैठ के सोचती रहती है भाई मेरे में कुछ गलत होगा, कि मैंने तो पॉर्न में ऐसा देखा या मैंने टीवी में ऐसा देखा. इवन अ शो जो इतना रेडिकल था, सेक्स इन द सिटी जब आया था, मुझे बड़ा रेडिकल लगा था, मैंने ऐसा रिप्रेजेंटेशन देखा ही नहीं था. उस शो में भी हमने ये देखा कि लड़कियों का ऑर्गेज्म कैसे दिखा रहे हैं, पेनिट्रेशन से. व्हेन द वास्ट मेजॉरिटी, 80% छोटा नंबर तो नहीं होता है, 80% औरतें ग्लोबली ऑन एवरेज स्टैट्स में ये बोलती हैं कि पेनिट्रेशन इज नॉट डूइंग इट. तो ना लड़की को पता है ना लड़के को पता है, एंड अनफॉर्चुनेटली ध्यान भी नहीं दिया जाता है औरतों के ऑर्गेज्म को. इट्स नॉट जस्ट दैट कि अवेयरनेस का इशू है, लोगों को आधे लोगों को तो ये पता ही नहीं होता लड़कियों को ऑर्गेज्म भी होता है. मेरे कंटेंट से मुझे ये समझ में आया है. बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता है कि लड़कियां भी मास्टरबेट करती हैं, लड़कियों को भी सेक्सुअल प्लेजर का कोई पॉइंट होता है उनके दिमाग में कि भाई हम भी कर सकते हैं, ये हमारे अंदर भी डिज़ायर हो सकती है. तो प्रॉब्लम्स मतलब कहाँ शुरू होती हैं कहाँ ख़त्म होती हैं समझ में नहीं आता है.
व्हाट्स द 80%
क्लिटोरिस के स्टिमुलेशन से. तो क्लिटोरिस जो है एक छोटा सा मटर के दाने टाइप का ऑर्गन होता है, वजाइनल ओपनिंग के ऊपर होता है, और हमें सिर्फ इतना सा दिखता है, जबकि इंटरनली काफ़ी बड़ा होता है वो. इट्स अबाउट द साइज ऑफ योर पाम, दिखता हमें इतना सा है. एंड काफ़ी सारी मोस्ट लड़कियां जो हैं वो क्लिटोरिस को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली स्टिमुलेट करने से ऑर्गेज्म करती हैं. तो जो लोग बहुत थ्रेटन हो जाते हैं ना कि सेक्स टॉयज बहुत बढ़ रहे हैं आजकल, अब लड़के यूजलेस हो जाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है. बिकॉज इंटीमेसी इज समथिंग डिफरेंट, पहली बात. और चाहे वो ऑर्गेज्म सेक्स टॉय के थ्रू आए या लड़के के थ्रू आए या किसी भी पार्टनर के थ्रू आए, वो क्लिटोरिस से आने वाला है, वो पेनिट्रेशन से वैसे भी नहीं आने वाला है. पेनिट्रेशन प्लेजरेबल बहुत होता है, बट इट डजेंट लीड टू एन ऑर्गेज्म. ऑल्सो आई थिंक हमें ऑर्गेज्म की इंपॉर्टेंस को भी रिस्ट्रक्चर करने की ज़रूरत है. जंग लड़ने नहीं आए हैं. हर चीज़ का एंड, हर सेक्सुअल एक्सपीरियंस का एंड गेम ये नहीं होता है कि यू आर वर्किंग टूवर्ड्स द फिनिश लाइन ऑफ द ऑर्गेज्म. इंटीमेसी इन एंड ऑफ इटसेल्फ इज़ वेरी ब्यूटीफुल, एंड सेक्स इन एंड ऑफ इटसेल्फ इज़ वेरी ब्यूटीफुल एंड वेरी प्लेजरेबल. सो
इंटरेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू कि हर टाइम इट्स नॉट अबाउट फाइंडिंग द ऑर्गेज्म, इट्स फॉर बोथ द पार्टनर्स.
So, अगर हम इस तरह से रिस्ट्रक्चर कर सके ना, तो प्रीमेच्योर एजैकुलेशन का जो स्ट्रेस होता है, बहुत सारे प्रीमेच्योर एजैकुलेशन के केसेस एंग्जाइटी की वजह से होते हैं कि क्या मैं लॉन्ग लास्ट कर पाऊंगा कि नहीं,
इसकी वजह से प्रीमेच्योर एजैकुलेशन.
हाँ, मतलब आपका बॉडी नर्वस स्टेट में चला जाता है. हाँ, परफॉर्मेंस एंग्जाइटी हो जाती है, नर्वस स्टेट में चला जाता है, प्रीमेच्योर एजैकुलेशन हो जाता है, जो चीज़ आप प्रिवेंट करने की वजह से यहाँ पहुंचे इन द फर्स्ट प्लेस. एंड अगर हम इस तरह इस ऑर्गेज्म के बंधन को छोड़ देना, एंड वी जस्ट स्टार्ट एन्जॉइंग द प्रोसेस कि भाई आई एम बिल्डिंग अ कनेक्शन विद माई पार्टनर, आई एम एन्जॉइंग प्लेजर विद दैम, दे आर एन्जॉइंग प्लेजर विद मी, अगर हम इस तरह से रिस्ट्रक्चर कर लें तो ये जो लड़ाइयाँ होती हैं ना सारी खत्म ही हो जाएंगी.
बट वॉट डू यू थिंक इज द बिगेस्ट रीजन? सब लोग बोलते हैं परफॉर्मेंस एन्जाइटी की वजह से इरेक्टाइल डिसफंक्शन होता है, परफॉर्मेंस एन्जाइटी वैसे प्री मेच्योर एजैकुलेशन होता है, परफॉर्मेंस एन्जाइटी की वजह से फीमेल ऑर्गेज्म नहीं हो पाता, परफॉर्मेंस एन्जाइटी की वजह से शी इज़ नॉट टर्न्ड ऑन इनफ, राइट? बहुत सारे. तो व्हाट आर द वेज दैट पीपल कैन स्टॉप हैविंग परफॉर्मेंस एन्जाइटी, बोथ द पार्टनर्स?
आई थिंक क्लिटोरल एजुकेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिसको मैं बोलती हूँ गेट क्लिटोरेट, व्हिच इज दैट यू नो इफ यू हैविंग एन इच ऑन योर बैक एंड यू आर स्क्रैचिंग योर आर्म, वो खुजली ख़त्म नहीं होने वाली है. एंड दैट्स बेसिकली व्हाट्स हैपनिंग, कि हम वजाइना के अंदर एक मैजिकल जी स्पॉट ढूंढते रह जाते हैं, क्लिटोरिस पे फोकस नहीं करते हैं, पेनिट्रेशन पे इतना ज़्यादा ओरिएंटेड हो जाते हैं कि इफ़ यू डोंट लास्ट 25 मिनट्स इन बेड यू आर बैड एट परफॉर्मिंग और समथिंग लाइक दैट. मतलब पॉर्न तो यही सिखाता है ना. तो या आपका पीनस लार्ज इनफ नहीं है तो यू आर बैड एट परफॉर्मिंग. तो इन शैकल्स को छोड़ के अगर हम बेसिक समझें कि इंटिमेसी क्या होती है, सेक्स क्या होता है, एंड बॉडी एजुकेशन करें, मैं सेक्स एजुकेशन तो बोलती ही नहीं हूँ, बोलती हूँ बॉडी लिटरेसी होनी चाहिए. वंस यू स्टार्ट डूइंग दैट, ये प्रेशर हटने लगता है जो हमने थिएट्रिकल रिप्रेजेंटेशंस देखे हैं. व्हाट आई ऑलवेज से इज कि लर्निंग योर सेक्स एड फ्रॉम पॉर्न इज लाइक गेटिंग योर फिजिक्स लेसन फ्रॉम अ रोहित शेट्टी फिल्म. रियलिस्टिक नहीं है, ऐसा नहीं होता है. तो अगर हम ये प्रेशर ही हटा दें अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस का, तो कितनी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी. एंड आई थिंक दैट इज व्हाई दिस एजुकेशन इज सो सो इम्पॉर्टेंट. फॉर मी इट ऑल कम्स बैक टू एजुकेटिंग पीपल अबाउट ऑल दिस, बिकॉज इफ वी लेट गो ऑफ दीज अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस एंड अंडरस्टैंड व्हाट इज एक्चुअली सपोज टू हैपन, आधी प्रॉब्लम ऐसे ही सॉल्व हो जाएंगी.
ओके, व्हाट आर पीपल डूइंग रॉन्ग व्हेन दे हैव सेक्स? What do they do wrong? Not from the pleasure point of view, from the point of view कि एक दूसरे की health के लिए कितना खतरा है और क्या सही है.
Relying on
I read like first content which I ever saw yours was about oral sex and you were talking about female condoms and बतानी क्या क्या बहुत सारी चीजें थी. It was like long time ago and I found it very fascinating कि okay, sex हमेशा देखा था कि it's a pleasurable activity, great. बेस्ट इज तुम्हें अगर STI नहीं चाहिए, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन नहीं चाहिए, डिजीजेज नहीं चाहिए, तो तुम कॉन्डम्स यूज करो एंड दैट्स इट. पर क्या क्या मतलब होता है जिसकी वजह से तुम यू बोथ आर एट रिस्क एंड व्हाट आर द डेंजर्स ऑफ इट, करना चाहिए नहीं करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, क्या करना चाहिए, ऑल ऑफ दैट, राइट? क्योंकि सो फर्स्ट टाइम व्हेन आई गॉट टू नो अबाउट इट, राइट, देयर वर टू थॉट्स. वन वॉज, एक तो तुम्हें ना कोई सिखाता है जो तुमसे बड़ा हो, कोई भैया अंकल टाइप, राइट, वो तुम्हें ज्ञान देते हैं और तुम उन्हें बड़ा एजुकेटेड समझते हो. इट्स नॉट कि फालतू वो पौन ज्ञान दे रहे हैं, वो तुम्हें कुछ सिखाते हैं और वो जो बोलते हैं मतलब वही तुम्हारे लिए प्ले बुक है. हाँ, वही तुम्हारे लिए प्ले बुक है, क्योंकि और तो पता नहीं है कहीं पर कुछ भी, क्योंकि यूट्यूब पर जाके देखा नहीं किसी ने कि हाउ टू डू द राइट वे, व्हाट्स द राइट वे ऑफ हैविंग सेक्स, राइट? इट्स ईदर पौन और दिस गाय, तो तुम्हें पता नहीं है. एंड देन देयर इज वन वे विच इज कि जहाँ पे जो विच इज बुक्स, विच इज अवेयरनेस, डॉक्टर्स लाइक यू क्रिएटिंग कॉन्टेंट, ऑल ऑफ दैट. एंड मोस्टली लोगों को भैया टाइप के उससे कॉन्टेंट आता है, स्कूल में सिखाते हैं, कॉलेज में सिखाते हैं, इधर उधर बाहर होते हैं, राइट? दैट्स व्हाई. सो फॉर द लाइक आई डिडंट नो, ऑब्वियसली इट वॉज वे सून बिफोर आई इवन स्टार्टेड हैविंग सेक्स, उसके पहले मेरे को ज्ञान दिया था. सो ग्रेट थिंग दैट व्हेन आई स्टार्टेड हैविंग सेक्स तब मेरे पास काफी नॉलेज था, बुक वाला, इंटेलिजेंट डॉक्टर वाला, सो दैट आई डिडंट एंड अप. एंड टेल यू द बिगेस्ट थिंग, देयर वाज लाइक अगर आपका एक पार्टनर हो ना तो आपको प्रोटेक्ट एक्सरसाइज करने की जरूरत नहीं है. दिस वाज लाइक अ यूज थिंग इन माय कॉलेज एंड फ्रेंड ग्रुप एंड देयर लाइक यू डोंट नीड टू यूज कॉन्डम फॉर वन पार्टनर. क्या फर्क पड़ता है यार, फिर थोड़ी एसटीआई तब होंगे जब तुम मतलब तुम्हारे मल्टीपल पार्टनर्स हो, तो फिर तुम इधर उधर के इन्फेक्शन इधर उधर करोगे और तुम्हारी प्रॉब्लम्स होंगे ना. वाज लाइक this made sense back then. What do you feel, what do you think about, like is it right, wrong, what is this myth?
I'm thinking of an analogy for this. Jaise basically jab covid ke time pe agar aap ghar se nikal ke sirf doodh wale ki dukaan pe ja rahe hain aur wapas aa ja rahe hain doodh leke, doodh bread anda khareed ke subah, versus aap supermarket ja rahe hain, exposure to ho raha hai na, fir bhi chahe kam exposure ho par ho to raha hai. And log सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन के बारे में ये समझते हैं कि STI होने के लिए सेक्स करना ज़रूरी है. ऐसा नहीं है, समटाइम्स सेक्सुअल टच इज़ इनफ. जैसे हर्पीज़ हो गया, हर्पीज़ टच से फैल सकता है, लोगों को अपने नेल में हर्पैटिक विटलो हो सकता है. तो STI मतलब इन्फेक्शन है यार, इन्फेक्शन खांसी जुकाम कहीं से भी उठा लेते हैं, तो ये भी कहीं से भी उठा सकते हैं. ऐसा नहीं है कि आपको सेक्स करने की ज़रूरत है फॉर इट, विच इज़ वाई कॉन्डम्स भी बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी हैं. बट ऐसा नहीं है कि 100% परफेक्ट कॉन्डम यूज़ के बाद भी आप हर STI से बच जाएंगे. इसलिए बेसिक हाइजीन मेंटेन करना ज़रूरी है. हाँ, धो के रखो, बहुत सिंपल बात है. एंड काफ़ी मतलब इंटरेस्टिंग बात है कि इतनी बड़ी जनसंख्या के बावजूद सो मेनी पीपल आर हैविंग सो मच सेक्स इन दिस कंट्री, बट हमें फिर भी बेसिक्स नहीं पता है. आई थिंक माई फेवरेट स्टोरी दैट आई लाइक टू शेयर एवरीवेयर, वन ऑफ द फाउंडेशन ऑफ वाई आई गॉट इन टू दिस काइंड ऑफ कॉन्टेंट. सो बोथ माई पेरेंट्स आर फर्टिलिटी डॉक्टर्स. माई डैड डील्स विद मेल फर्टिलिटी, माई मम डील्स विद फीमेल इनफर्टिलिटी. और इन लोग के पास एक कपल आया जो पिछले 7 साल से दे वर ट्राइंग टू हैव अ बेबी, नहीं काम चल रहा था. सो टेस्ट वेस्ट करे गए, टेस्ट में सब कुछ नॉर्मल निकला, देर वॉज नो रीजन वाई दिस कपल शुड बी स्ट्रगलिंग. बहुत देर माथा पच्ची करी, फाइनली माई डैड वॉज लाइक क्या चल रहा है भाई, उसको चेंबर में लेके गए, उन्होंने कहा तुम कर क्या रहे हो. एंड इट टर्न्स आउट पिछले 7 साल से ये आदमी अपनी वाइफ के बेली बटन में पेनिट्रेट कर रहा था, क्योंकि पेट में छेद है, बच्चा पेट से आता है. सो ये बहुत पुरानी कहानी नहीं है, 25 साल पुरानी कहानी है। वो जो बच्चा पापा ने एक्चुअली एक्सप्लेन किया कि भाई एक्चुअली ये होता है, ये सब एक्सप्लेनेशन के विद इन 2 मंथ्स द लेडी वॉज प्रेगनेंट, आई नो द किड दैट वॉज बॉर्न फ्रॉम इट, और ये 25 साल पुरानी बात है। एंड प्रॉब्लम ये है कि आज भी हालत एजुकेशन की यही है। अब खैर पॉन से लोग समझने लगे हैं काफ़ी कुछ, बट फिर भी मतलब कुछ सही तो सीख नहीं रहे हैं पॉन से। तो इतना ज़्यादा इट ऑल कम्स बैक टू दिस, द प्रॉब्लम्स आर सो फंडामेंटल यू नो दैट दे आर सॉल्वेबल, बट इतना मसल लगेगा उसके लिए।
I mean, how sexual health and wellness is different for lesbian, gay, queer than straight people? Is it different or is it same?
It's not, it's the same. बस कुछ वैक्सीन्स हैं जो हम रेकमेंड करते हैं for people of the LGBTQIA community in particular.
Okay.
हम लोग बोलते हैं कि if you are a member of the queer community, you should definitely get हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन, HPV वैक्सीन हम सबको बोलते हैं। मंकी पॉक्स बीच में फैला था, इट वॉज वेरी प्रोमिनेंट इन द गे कम्युनिटीज एक्चुअली, तो उसमें भी हम लोग तब मंकी पॉक्स का जब वैक्सीन आया था हम रेकमेंड कर रहे थे। आई डोंट नो इफ इट वॉज इम्प्लीमेंटेड इन इंडिया एट ऑल। तो जनरली देर इज नो अदर डिफरेंस। वॉट वी डू वॉन्ट टू एम्फसाइज इज कि वॉट एवर योर ओरिएंटेशन, ऑलवेज यूज अ कॉन्डम। ओरल सेक्स, एनल सेक्स, वजाइनल सेक्स, जो भी सेक्स हो रहा है, use protection, because STIs हर तरह से फैल सकती हैं। लोगों के दिमाग में सिर्फ ये है कि पीनस इन वजाइना सेक्स से STI होता है,
ओरल सेक्स से भी हो सकता है,
ओरल सेक्स से भी होता है। माइकल डगलस फेमसली सेज कि उनको ओरल सेक्स से थ्रोट कैंसर हुआ था।
I was just gonna ask you, can oral sex or swallowing cum cause mouth cancer?
Swallowing
is one of the most searched terms on internet, by the way.
Spitting and swallowing doesn't make a difference, because कुछ भी हो रहा है आपका एक्सपोजर तो हो रहा है ना सीमन से। अब आप वही इन्फेक्टेड सीमन को लेके स्पिट कर दे रहे हैं, एक्सपोज तो हो गए, स्वॉलो कर दे रहे हैं, एक्सपोज तो हो गए, विच इज वाई जस्ट यूज अ कंडम नो, और गेट एन STI टेस्ट, दोनों पार्टनर्स करा लो, उसके बाद स्पिट करना है, स्वॉलो करना है, जो करना है पार्टी करो।
बट या लाइक ओरल सेक्स कैन लीड टू माउथ कैंसर,
बैक ऑफ द थ्रोट कैंसर, ओरोफेरेंजियल कैंसर जिसे हम बोलते हैं, अनप्रोटेक्टेड। This is why, agar if you are having oral sex with, you know, somebody who doesn't have a penis, तो आप एक dental dam बना सकते हैं। Basically, condom को लो, उसका ऊपर का part काट दो, नीचे का part काट दो, तो एक tube बन जाएगी, फिर उसको ऐसे काट दो, तो एक square बन जाएगा। Put that square on the vulva or the anus, wherever, and then have oral sex. मतलब एक barrier बनना चाहिए बस, कि direct fluid से contact ना हो।
Wow. Interesting. This is, all of these things are new. These are new ki oral sex se cancer ho sakta. I never knew this.
Mujhe bhi bahut shock laga tha jab mujhe pata chala tha.
Ha, like protect. So protected sex, even oral, that's a word of, and that is something that everybody should practice. But I didn't hear about mouth cancer, throat cancer. Okay. There's one moment which is becoming very evident these days, that is NOFAP. Have you heard of it?
Mm-hmm.
NOFAP moment.
No, not November.
So what are the advantages and disadvantages of no nut November or NOFAP movement?
So I think ek bahut bada confusion hai jo internet pe, wo ye hai ki people think NOFAP means no masturbation. Actually, the origins of the NOFAP movement are no porn. The founders of the NOFAP movement, if you look at their website also, उसके बेसिक बायो में लिखा हुआ है कि वी आर अगेंस्ट द कंजम्पशन ऑफ पॉर्न, क्योंकि बहुत सारे लोग का कंपल्सिव पॉर्न कंजम्पशन होने लगता है, क्योंकि वो हैबिचुअल बन जाता है।
तो नो फैप मतलब होता है पॉर्न मत देखो,
वो मिस इंटरप्रेट हो गया है ओवर द इयर्स और कुछ और ही बन गया है वो।
हाँ, मिस इंटरप्रेट हो गया, ये बन गया कि डोंट मास्टरबेट and don't have sex also, right?
It's... look at the Wikipedia page of NOFAP.
No, NOFAP is don't have sex and
don't ejaculate, basically.
Don't ejaculate. So no sex, no masturbation. Okay.
So, एक ancient Chinese principle था, which basically said कि आपके सीमन में बहुत पावर होती है, उसको ची बोलते हैं, QI, और आप अपनी ची को कंजर्व करिए विदाउट ejaculating. तो इंडियन कॉन्टेक्स्ट में जब ये आया तो ये तांत्रिक सेक्स में चला गया, जहाँ पे ये था कि आप ड्राई ऑर्गेजम कैसे कर सकते हैं, कि आप यू हैव एन ऑर्गेजम पर आप ejaculate ना करें, और इसके लिए थोड़ी टेक्निक सीखनी पड़ती हैं, एंड इट वाज जस्ट कि अलग टाइप का सेक्स। ये कहीं पे कुछ तो मिस इंटरप्रिटेशन हुई, मिक्सअप हुआ, और सारी चीज़ें मिला के इन्होंने बोल दिया दैट अ लॉट ऑफ पीपल ऑन द इंटरनेट स्टार्टेड क्लेमिंग कि अगर आप एजैकुलेट करेंगे तो आपकी बॉडी से प्रोटीन बहुत लॉस हो जाएगा. मेरी बुक में कहीं सीमेन का कंटेंट एनालिसिस है कि कितना कम प्रोटीन होता है उसमें, वो इतना भारी प्रोटीन का नाश नहीं हो रहा है. आपके बॉडी से वाइटल मिनरल्स चले जाएंगे, ऐसा कुछ बहुत ज़रा सा अमाउंट निकलता है यार, 2 to 5 ml निकलता है क्या, इट्स लाइक अ टीस्पून, क्या निकाल लोगे उसमें. सो इफ़ यू आर कंसर्नड अबाउट कि आपका पॉर्न या मास्टरबेशन का लेवल बहुत ज़्यादा है और आपको ये हेल्प कर रहा है तो मस्त करो. आई एम नॉट अगेंस्ट दैट एट ऑल. व्हाट आई एम अगेंस्ट इज मिस इन्फॉर्मेशन. तो
नोफैप का रियल मतलब है कि पॉर्न मत देखो.
हाँ, ऑब्वियसली नाउ इट्स बिकम अ मूवमेंट जिसमें काफ़ी लोग को फ़ायदा होता है मास्टरबेट ना करने से. अगर ऐसा हो रहा है ग्रेट, गो फॉर इट. अगर आपको लग रहा है कि आपका मास्टरबेशन इतना कंपल्सिव हो गया है कि आप स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, कॉलेज नहीं जा पा रहे हैं, काम छोड़ छोड़ के, दोस्तों के साथ मिलना छोड़ छोड़ के, यू प्रिफर टू स्टे एट होम एंड वॉच पॉर्न एंड फैप, दैट्स अ प्रॉब्लम. एंड इफ दैट्स हेल्पफुल फॉर यू, एक्सेलेंट. एंड अनफॉर्चुनेटली बहुत लोगों के पास थेरेपी और ये मेंटल हेल्थ रिसोर्सेज एक्सेसिबल नहीं हो सकते होते हैं जहाँ पे चीज़ें जाके डिस्कस कर सकें. तो अगर वहाँ फ़ायदा कर रहा है मस्त करो. बट ऐसा नहीं है कि मास्टरबेट या फैप करने से मतलब आपकी वाइटल एनर्जी चली जाएगी या कॉन्सेंट्रेशन खराब हो जाएगा या डोपामिन रिवॉर्ड सिस्टम खराब हो जाएगा. ऐसा नहीं होता है.
ऐसे कुछ भी नहीं होता.
मतलब अगर नो मास्टरबेशन,
सो लेट्स से नो मास्टरबेशन और मास्टरबेशन डजंट अफेक्ट एनी लाइफस्टाइल.
It doesn't affect.
How healthy is
unless master? It's compulsive.
Okay. क्या है healthy rate? Like तुम एक महीने में कितनी बार masturbate करते हो, हफ्ते में कितनी बार masturbate कर सकते हो?
मैंने बहुत बेहतरीन आंसर सुना था पिछली बार IFP पे, किसी ने ये सवाल पूछा था and these are my friend, she answered. She said कि एक दिन में कितनी बार डांस कर सकते हो. खुद रुक जाओगे ना यार, मतलब एक बार के बाद आदमी खुद थक के रुक जाएगा. हर किसी का नॉर्मल अलग अलग होता है पहली चीज़. एंड दूसरी बात कि कोई सेट नंबर नहीं होता है. समटाइम्स आपका डिज़ायर बहुत ज़्यादा होता है, मन कर रहा होता है व्हेन यू हॉर्नी इन योर यंग, जब टीनेज ईयर्स में व्हेन द हॉर्मोन्स कम इन, तो बहुत मन करता है तब करने का. ओवर द ईयर्स कम हो जाता है डिज़ायर. सिमिलरली
बट इफ यू डू, माई पॉइंट वाज कि इफ यू आर, आई एम जस्ट कंपेयरिंग पीपल राइट नाउ फॉर नो फैप वर्सेस फैप, राइट. तो इट्स लाइक कि अगर तुम एक हफ्ते में मान लो 3-4 बार मास्टरबेट करते हो वर्सेस तुम 0 मास्टरबेट करते हो, डू यू थिंक दोनों में कुछ फर्क पड़ता है इन टर्म्स ऑफ हेल्थ?
फर्क ये पड़ेगा कि अगर आप मास्टरबेट नहीं करेंगे तो वो सीमन अपने आप बाहर आ जाएगा नाइटफॉल बन के. इट्स लाइक ब्रेस्ट मिल्क, यू नो, अगर आप ब्रेस्ट फीड कर रहे हैं और आप फीड कराते रहें तो वो मिल्क निकलता रहेगा. आप फीड कराना बंद कर दें तो वो मिल्क लीक कर जाता है. बहुत सारे लैक्टेटिंग पीपल कंप्लेन ऑफ लीकिंग. सीमन में भी सेम है, यू मेकिंग सो मच स्पर्म ऑल द टाइम दैट योर बॉडी विल फाइंड अ वे टू गेट इट आउट. तो वो नाइटफॉल बन के निकल जाएगा. अब प्रॉब्लम ये आती है, नाइटफॉल इज नॉट अ प्रॉब्लम, नाइटफॉल इज वेरी नॉर्मल पार्ट ऑफ सेक्सुअल डेवलपमेंट. प्रॉब्लम ये आती है कि जो लोग नोफैप प्रैक्टिस कर रहे हैं उनका जब नाइटफॉल हो जाता है तो दे फील लाइक दे फेल्ड इन सम वे और बहुत स्ट्रेस में आ जाते हैं कि भाई मैं तो इतना मतलब वो क्या व्हाट डज आकिर खान से, सख्त लौंडा, मैं तो सख्त लौंडा हूँ, ये क्या हो गया मेरे साथ. और बहुत स्ट्रेस में चले जाते हैं, बहुत एंग्जाइटी हो जाती है व्हेन एक्चुअली दे आर ट्राइंग टू चैलेंज ऑल ऑफ दीज इश्यूज. सो इट्स ओके इज ऑल आई एम सेइंग. इफ यू वांट टू डू इट, डू इट. इफ यू डोंट वांट टू डू इट, डोंट डू इट. कोई हेल्थ पे आपका बहुत ड्रामेटिक इफेक्ट पड़ने नहीं वाला है अनलेस योर मास्टरबेशन इज कंपल्सिव.
हां, मतलब बहुत एडिक्टिव हो तो देन इट्स अ प्रॉब्लम. ओके, एंड लेट्स टॉक अबाउट फ्यू प्रोडक्ट्स दैट आर मार्केटिंग गिमिक्स. Right, because my this favorite. Is it. Yeah, and my favorite too, because the first time when we ever got on phone call, I said, ki yaar, you know, you should build something in sexual awareness, sexual health sort of industry. You should build a product, you should do something. And like, Raj, mujhe na gimmicky products nahi karne. I was like, okay, mujhe pata bhi nahi hai gimmicky products hote kya. Main tumse hi poochne wala hu. Do you remember the first time you said
yes, yeah, right? Yes. I think you listed 5 products and I was like, sare gimmick hai, inme se kisi ki zarurat nahi
hai. I was say, my team listed ki ye 5 products sabse zyada search kiye ja rahe hain. And you were like, Raj, ye nahi kar raha. I was like, nahi kar rahe. Main bata raha hu market mein log search kya kar rahe hain. Right. Okay, so what are the top 5 products which you feel ki bahut gimmicky products hai, in products se dur raho, inse kuch nahi hota?
वजाइनल वॉश या पीनस वॉश, बॉल वॉश डेडिकेटेड बकवास है.
वजाइनल वॉश बकवास है
क्योंकि वजाइना को कुछ नहीं करना चाहिए, वल्वा जो आउटसाइड पार्ट है उसको साफ करना चाहिए, वो साधारण पानी से साफ किया जा सकता है, वॉश की जरूरत नहीं है. बिकॉज लोग वॉश से ओवर वॉश कर देते हैं बिकॉज उनको लगता है वॉश करने से उनके वल्वा से पीना कुलाडा की स्मेल आएगी, नॉर्मल स्मेल नहीं आएगी और फिर बहुत इन्फेक्शन हो जाते हैं.
पीना कोलाडा।
अरे यार सच में ये मतलब ऐसे ऐसे एडवर्टाइजमेंट्स होते हैं, रोज फ्लेवर्ड और पीना कोलाडा फ्लेवर्ड और माउंटेन ब्रीज फ्लेवर्ड, क्या यार मतलब वल्वा से माउंटेन ब्रीज महक आने वाली है, व्हाट इज दिस। दूसरा जेनिटल डीपिगमेंटेशन या लाइटनिंग क्रीम्स,
वजाइना ब्राइटनिंग क्रीम्स,
हाँ लाइटनिंग क्रीम, स्क्रब, लोशन, सब कुछ एब्सोल्यूट बुलशिट। नॉट ओनली डू दे नॉट वर्क, बट इनमें ब्लीचिंग एजेंट्स होते हैं जिससे अगर आपको इम्यून रिएक्शन हो गया तो आपका डार्कनिंग और हो जाएगी
उल्टा हो जाएगा,
मतलब और ही प्रॉब्लम बढ़ जाएगी आपकी। ब्रेस्ट फॉर्मिंग क्रीम्स, आप ग्रेविटी एक क्रीम से फाइट नहीं कर सकते हैं, ब्रेस्ट में वजन होता है, ग्रेविटी का काम होता है वजन पे खींच के उसको जमीन पे लाना, सो ऑल ब्रेस्ट उसमें थोड़ा सा भी वेट हो तो वो नीचे सैग करेगा। पीनस लेंथनिंग क्रीम्स, पिल्स, लोशंस, पीनस का लेंथ नहीं बढ़ाया जा सकता है। अगर आप पीनाइल एक्सटेंशन सर्जरी कराएं तो उसमें क्या करते हैं कि पीनस जो है ना बोन पे, अगर ये प्यूबिक बोन है जो फ्रंट की बोन होती है उस पे पीनस ऐसे लटका होता है और जितना आपका पीनस बाहर है उतना ही लेंथ आपका अंदर भी होता है पीनाइल टिश्यू, वो यहाँ पे एक लिगामेंट से लटका रहता है। कभी कभी उस लिगामेंट को ड्रॉप कर देते हैं ताकि थोड़ा और लंबा लगे, कभी कभी पीनस वॉन्की हो जाता है उससे। दिस इज़ व्हाट हैपेंस इन पीनाइल सर्जरी, दिस इज़ दी लिटरली दी ओनली थिंग दैट यू कैन डू विच इज़ नॉट वेरी सक्सेसफुल वेरी ऑनेस्टली। पिल, स्क्रीम, लोशन से कुछ भी नहीं होने वाला है, कोई पीनस का साइज नहीं बढ़ेगा। और क्या,
सो इन फैक्ट व्हाट यू जस्ट सेड इज क्रेजी बिकॉज आई एम जस्ट थिंकिंग अबाउट इट नाउ, इट्स वजाइनल ब्राइटनिंग क्रीम एक्चुअली ब्राइट नहीं कर रही है और वो डार्क कर सकता है। पीनल एक्सटेंडेड सर्जरी, इस सर्जरी की जिससे तुम अपना पीनस की साइज बढ़ाने के लिए सर्जरी करा रहे हो, वो साइज बढ़ा तो जा नहीं
रहा,
डायरेक्शन ही चेंज कर देगा।
हाँ तो मतलब साइड इफेक्ट काफी ज्यादा है। म्यूचुअल फंड्स में बोलते हैं ना, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, प्लीज रीड द ऑफर डॉक्यूमेंट केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग। आई थिंक ये हर सेक्सुअल वेलनेस प्रोडक्ट से पहले बोलना चाहिए।
और कौन से प्रोडक्ट्स हैं जो बहुत क्रेजीली मार्केट किए जा रहे हैं?
बट स्क्रब बहुत चलता है।
बट स्क्रब,
हाँ, एक देयर इज वन ब्रांड जिसने मेरे पे केस किया था, मैंने कोर्ट केस लड़ा है पूरे एक साल जेनेटेड लाइटनिंग क्रीम के अगेंस्ट, क्योंकि उन्होंने मुझ पर केस किया था कि मैंने डेफामेशन किया है। बेसिकली मैंने एक रील बनाई थी कि आपको जेनिटल लाइटनिंग क्रीम्स की ज़रूरत नहीं होती है और ग्रीन स्क्रीन पे पीछे मैंने इनका प्रोडक्ट मस्त लगा दिया था नाम हटा के। इन्होंने बोला हमारा प्रोडक्ट आइडेंटिफाइबल है, डेफामेशन का केस ठोक दिया। हमने केस वापस लड़ा क्योंकि ये उसमें ब्लीचिंग एजेंट्स यूज़ कर रहे थे जो कि कॉस्मेटिक लेवल पर नहीं फार्मास्यूटिकल लेवल पर थे। केस खत्म। सो बट आई मीन बेसिकली है ऐसी बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। और क्या होते हैं, बहुत चीजें हैं यार इस इंडस्ट्री में तो भरी हुई हैं चीजें।
डू यू नो इंडिया में सेक्सुअल प्लेजर प्रोडक्ट्स आर इलीगल टू सेल?
नॉट
नो,
द क्राइटेरिया इज दैट द एडवर्टाइजिंग और द प्रोडक्ट इमेजिंग शुड नॉट बी ऑब्सीन। नाउ ऑब्सीन इज अ वेरी सब्जेक्टिव वर्ड,
ओके,
सो आप फंस भी सकते हैं नहीं भी फंस सकते हैं। जैसे अभी मेरे साथ कुछ दिन पहले हुआ, आई वर्क विद दिस ब्रांड कॉल्ड लव डिपो एंड आई क्रिएट एजुकेशनल वीडियोज़ फॉर देम, और उन्होंने मेरे को कुछ सामान भेजा था वीडियो बनाने के लिए। इट वॉज वेरी स्मॉल, इतना बड़ा सा वाइब्रेटर, उसमें बुलेट वाइब्रेटर बोलते हैं उसे, एंड मैं भूल गई कि मेरे सूटकेस में वो पड़ा हुआ है। अब अलाहाबाद में जब आप फ्लाइट लेते हैं तो आपका चेक इन बैगेज स्कैन होता है,
इंदौर में भी होता है।
अब स्कैन पे वो मुझसे कह रही है आपके बैग में बैटरी है। भैया बैटरी नहीं, हेयर ड्रायर समझ रहे हैं आप, वो हेयर ड्रायर है। सर नहीं नहीं बैटरी है। जीपो थोड़ी देर हुई, कहती है बैग खोलिए। कौन सी बैटरी है? अब बैग खोला तो उसमें से निकला वाइब। अच्छा, इलाहाबाद में CRPF स्टाफ मैनेज करता है एयरपोर्ट, निकला एंड आई वाज जस्ट लाइक अरे बुलेट वाइब्रेटर, एंड आई शी ओनली हर्ड बुलेट। अब वो तो पैनिक में चली गई, ये क्या है? मैंने कहा मैम मसाजर है, मसाजर। कहती कौन सा मसाजर है? वो समझ में नहीं आया। मैंने कहा मैम नेक मसाजर है। कहती है इतने छोटे से मसाज कैसे होगी? थैंकफुली सम CRPF पीपल रिकॉग्नाइज मी बिकॉज ऑफ माई कॉन्टेंट ओवर देयर, तो दे बोले करिए तो डॉक्टर क्यूटर्स हैं। बात डिफ्यूज हो गई वहाँ पे, बट आई हैड टू एक्सप्लेन व्हाट अ पर्सनल मसाजर इज। बट वो ऑब्सीन नहीं दिखता है ना, इतना छोटा सा है तो मैं फंसी नहीं। बट वही अगर पीनिस के शेप का होता, so it's up to them to decide what is obscene or not.
okay, so मतलब अगर मैं एक vibrator जो penis के shape का दिखता है वो अगर बेचता हूँ तो मुझे जेल हो सकती है?
जेल होगी कि मतलब नहीं, मुझे नहीं पता,
मतलब इलीगल प्रॉब्लम होगा
इफ समबडी ऑब्जेक्ट्स टू इट. If they, if somebody who is in the position of power finds it obscene and makes a complaint against you, and the jury decides ki obscene hai, to fir haan.
Ye to bahut hi thin line hai. Yes. Technically, jisko phasana hai, phasa dega.
And India mein, I think, I read the stat recently, 600 crore ka market hai. Pleasure products ka.
Yeah, yeah. And import hota hai. Sab. So tell me, like, it's not illegal, but it's just ki obscene hai.
Obscenity
toh.
Laws hai India mein. And that's also another British remnant, you know, this obscenity law.
Kya hai?
Ki yahi matlab ye British uska hai ki us time pe ek obscenity law hua karta tha during the time of colonization, jo aaj hamare criminal procedure code mein, criminal procedure mein aayega ye.
Pata nahi. Mujhe nahi pata.
Laws mein aata hai.
Mujhe thoda sa bhi dikhta hai ki isme illegal legal ka kuch bhi hoga, main dur rehta.
Absolutely no, that's
it. Like, mujhe thin lines mein bhi jana, mujhe sochna bhi nahi. Great.
No, I was speaking to for my book, जब मैं रिसर्च कर रही थी तो बहुत इंटरेस्टिंग मुझे नंबर मिला. एक बहुत इंडिया में बड़ा कॉन्डम सेलर है, उनके एशिया हेड से मैं बात करी थी when I was researching for my book, and he told me very interesting thing कि इंडिया is one of the largest consumer of edible underwear.
Edible underwear?
Yes, globally.
What is edible underwear?
Underwear that you can eat. मतलब edible underwear. क्या बताऊं मैं?
क्या बात कर रहे हो? मुझे बताएंगे ऐसी अंडरवेयर आती है?
The first underwear.
I feel so dumb right now. Half of the things which you have said, I'm like, यार मुझे नहीं पता ये सब.
इसकी स्टोरी बहुत कूल है. The first edible underwear that was launched was called Candy Pants, and ये दो कॉलेज के बच्चे थे जिन्होंने ऐसे मजे में, I think they were stoned or something, that was the story. और उन्होंने अपना सोचा कि एक edible underwear निकालते हैं, और वो इतना successful हुआ that they became millionaires within a year or something like that. And now edible underwear is a big real thing. Market segment. And this person who I was speaking to, he mentioned ki the states of Odisha and Jharkhand are the largest consumers of edible underwear Hindustan mein.
Why?
I don't know, rasgulla flavored underwear. Who knows?
Really?
Yeah, that's what he told me. I don't know, I don't have any stats to back it up, but mujhe unhone industry leader ne bataya tha.
What's the point of edible underwear?
Foreplay, I guess. I don't know. Some people find things enjoyable that we don't understand. It's okay.
Yeah. Sorry.
मुझे बस infections का डर लगता है, इसलिए अगर कोई इसके बारे में बात करता है तो मैं बताती हूँ कि sugar बहुत है, yeast infection हो सकता है. Be careful, but you know,
yeah, I mean,
I will not yuck anybody's yum.
That's a good line to say.
Yeah, yeah.
That's a very good line to say. I'm stealing it.
Totally.
Okay, what are the other facts you said? मेरे पास बहुत सारे interesting condom facts हैं, क्या थे?
Oh, this one is my favorite. I love sharing this one. So India was one of the first few countries in the world जिसने family planning unit establish किया था. 1950s में बन चुका था, when most countries were against family planning. So we were very progressive in that regard. और इंडिया ने एक जमाने में, इंडिया, US, जर्मनी और कहीं और, आई एम फॉरगेटिंग द थर्ड कंट्री, तीन जगहों से कॉन्डम्स इंपोर्ट करते थे एट अ वेरी एक्सपेंसिव प्राइस, ताकि इंडिया में फ्री में कॉन्डम बांटे जा सके. बट फिर सोचा गया कि भाई ये तो थोड़ा बेवकूफ़ी का काम है, इससे अच्छा हम अपना ही मैन्युफैक्चर कर लें. केरला इज सच अ रबर रिच स्टेट. तो केरला में हिंदुस्तान लेटेक्स इस्टेब्लिश करी गई. दैट वॉज द फर्स्ट कंपनी इस्टेब्लिश हियर टू मैन्युफैक्चर कॉन्डम्स. और जो पहले कॉन्डम्स का ब्रांड रखा जा रहा था, आज उसे निरोध बोलते हैं इंडिया में, बिकॉज निरोध मतलब प्रोटेक्ट, प्रिवेंशन होता है. उसका नाम रखना था कामराज, एज इन कामुक, इच्छा का राजा. पर उस समय इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट का नाम था के कामराज. इसलिए ये नाम नहीं रखा गया, एंड दैट्स व्हाई निरोध इज कॉल्ड निरोध. आई लव दिस.
नाइस. ओके, I have one more common disbelief which is going over internet, and ये research में है हमारी. Can black bras cause cancer in women?
No.
Have you heard it?
Black bras, underwear bras, bra पहन के सोना, हाँ, इन सब से cancer नहीं होता. बहुत आता है, मैंने अभी reel बनाई है इस पर. Very common question. Also, deodorant से breast cancer नहीं होता. Another very common myths.
Okay. So one thing, tell me this, the culture of pleasure and pain is also increasing in around the world now, very high on sex toys or bahut sari cheeze hai isme, different types, like there are different, BDSM is like of now a huge form, where in fact I was in Colombia, there was this, I met a trainer
Okay, so we were at a conference where most of the world trainers would come together and different, koi biomedicals pad raha hai, koi and age ko kaise, you know, kya kar rahe hai? reverse aging के बारे में कर रहा है. These are like big trends, success coaches, billionaires, सब उधर आ रहे हैं. This is one trainer who I met and I was awed by it. Right? He teaches people BDSM and how to become master of giving other people pain and pleasure at the same time. And there's a course for 2 years. So, वो 2 साल लोगों को ऐसे डिग्री सिखाता है कि दूसरे कैसे सामने वाले को हर्ट करो इन अ वे दैट दे फील प्लेजर. सो दिस इज बिकमिंग अ रियल थिंग एंड ही लुक लाइक ही इज मेकिंग बॉम्ब राइट एंड स्पेसिफिकली पोस्ट 50 शेड्स ऑफ ग्रे. इट इज बिकमिंग अ गुड इट्स बिकमिंग अ बिग थिंग. व्हाई इज इट बिकमिंग बिग? व्हाई डू यू फील लाइक pain and pleasure are going hand in hand and becoming bigger and bigger?
What I've read is that submissives are more in control in a BDSM context because wo decide karte hain kya karna hai kya nahi karna hai. They can always stop any
words
and they can decide ki boundaries kya hain isko push karne ki. So itne controlled environment mein agar aap heightened sensations experience kar rahe hain, that can be quite thrilling, you know, aapka adrenaline release ho raha hai and you're just like excitement chal raha hai aise. This is what the logical part of my brain thinks. The other part of my brain also thinks ki novelty hai yaar. Insaan ko novelty chahiye har samay,
constant newness.
Bas hamare sare brain systems fire hone lagte hain, wo maza aa raha hai, nayi cheez hai,
dopamine.
And yeah, and maybe it's just a novelty angle, that's, you know, who knows. And BDSM subculture बहुत बड़ा रहा है हमेशा से, बस वो underground था. अब ये सारे subcultures, kink culture बहुत mainstream होता जा रहा है and more people are getting into it and talking about it, which is interesting. I like it.
You know,
शर्म हट रही है.
To me the logical, which I found it logical and मैं अपने खुद को ऐसे मनाता हूँ कि यार इसकी वजह से ये बढ़ रहा होगा. If you look at anything in a ह्यूमन्स एक्सपीरियंस जर्नी, जहाँ पे भी लोग अडिक्ट होते हैं कुछ ना कुछ सेम चीज़ करके, वहाँ पे वो एक लेवल अपर जाना चाहते हैं एंड दे फील अ सर्टन लेवल ऑफ स्ट्रेस एंड दैट इज वेर दे एंजॉय द मोस्ट. टॉक अबाउट सिंपल थिंग इज जिम. तुम रोज सेम जिम करोगे तुम बोर हो जाओगे, तुम जाओगे नहीं. इफ देयर इज कॉन्स्टेंट, क्योंकि आई वॉन्ट बीट दिस रिकॉर्ड एंड देन यू और दर्द करते हो, और ज्यादा प्रेशर, और ज्यादा प्रेशर, और देन यू फील बेटर.
प्रोग्रेसिव
ओवरलोड, राइट? देन इट्स सेम विद, लेट्स से इफ यू आर अ मैराथन रनर, इफ यू आर just a rock climber, you do whatever. There is an adrenaline where you just want to just go all deep, all deep, all deep, all deep. What do you do? And it can be as simple as car. Tum car chalate ho, tum pehle 60 mein darte ho, 60 ki speed chalao, fir tumhe sara avasi of so, fir tumhe wo adrenaline tab milta hai jab wo 200 ke upar jayega. So I think har kisi ka ek jo stress meter hai, if you keep increasing it day by day, that's why you like it.
That's interesting. It's pushing the envelope in new ways. Very interesting.
So that's why I think people are more into it. And that's now, and that's why there's a whole industry, which is sex toy industry, which makes sure that ki ha, tumhe adha ghanta figure out karne mein nahi lagegi ye kaise kar sakte ho, ye lo 1, 2, 3.
But you know what, I think that's very good. Matlab main apne experience se bata rahi hu ki main jab UK mein kaam karti thi, so we saw a patient one time who wanted to experience butt related pain for sexual pleasure. उसने लाइट बल्ब डाल दिया. अब दिस कैन बी सो डेंजरस, इन सो में वो बल्ब फट गया अगर अंदर तो हम क्या करेंगे. सो आर चैलेंज वॉज नॉट जस्ट टू टेक आउट दिस लाइट बल्ब, बट टेक आउट दिस लाइट बल्ब इंटैक्ट, कि उसको पेशेंट को डैमेज ना हो जाए. तो इससे अच्छा, हाँ मतलब ऐसी ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं, विच इज वाई वी नीड अ फील्ड लाइक दिस. वेरी फेमसली एक बार US में अभी हाल में ही हुआ था, पिछले 5 साल में, अ मैन हैड इंसर्टेड एन ईल अप हिज एनस.
ईल इज
लाइक द इलेक्ट्रिक ईल, वो जो मछली होती है, एंड अब निकल नहीं रहा है, क्या करें. आई डोंट नो हाउ दिस केस वॉज ऑपरेटेड. मैंने एक केस रिपोर्ट पढ़ा था, बहुत इंटरेस्टिंग था, मैं भूल गई हूँ अब, बट मैं हेडलाइन कभी नहीं भूल सकती उसका. Anyway, the main somebody had inserted an eel in their anus for pleasure.
I just want to put it up ki jo cheeze
एक नॉर्मल इंसान जैसे मैं हूँ या बहुत सारी ऑडियंस हमें ग्रोस आउट कर रही है, यू आर लाइक बड़ी इंटरेस्टिंग थी
मतलब मेडिकली तो
डॉक्टर वर्सेस अ नॉन डॉक्टर इज दिस कि जो हमें ग्रोस आउट कर रही है वो इंटरेस्टिंग लगती है
मेडिकली तो मतलब ये ना क्या चल रहा है यहाँ पे दिमाग में क्या चल रहा है बट what the sex toy industry has done is कि अब हमें ये पता है कि आप अगर एनस में कुछ इंसर्ट कर रहे हैं तो मेक श्योर उसका बेस फ्लेयर्ड हो, मतलब उसका बेस ऐसे होने की जगह इससे बड़ा हो, क्योंकि एनस क्या करता है ना, चीज़ें सकअप कर लेता है, जैसे वजाइना में कुछ खो नहीं सकता है पर एनस में खो सकता है, तो अगर एनस का इतना डायमीटर है और उसका बेस इतना बड़ा है तो ये चाहे एनस जितना सकअप कर ले उसे, इंटेस्टाइन उसको जितना सकअप कर लें, एक लेवल पर आके वो फंस जाएगा क्योंकि बेस फ्लेयर्ड है, इसलिए सेक्स टॉय सेफ होते हैं, वो सेफ मटेरियल्स के बने होते हैं। आई एम नॉट देयर टू यक एनीबडीज यम, जिसको जो करना है करे, बस सेफली करे और मतलब किसी और को डैमेज ना करे, इलीगली ना करे ऑब्वियसली, सो आई एम ऑन बोर्ड।
ओके बेन, वन क्वेश्चन आई ऑलवेज वांटेड टू आस्क अ गायनेक बट यू आर द क्लोजेस्ट आई एम स्पीकिंग टू वेरी ओपनली सो आई कैन आस्क यू, देयर इज वन थिंग इन इंडिया एटलीस्ट तुम ऑनलाइन पढ़ते हो कि बहुत सारे पार्टनर्स को, मेल पार्टनर्स को कॉन्डम्स यूज़ नहीं करने होते, राइट? और उसकी वजह से बहुत बड़ा इशू है कि जो पूरे इंडिया में ये प्रॉब्लम चल रही है, एंड एसटीआईज होती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती है, राइट? तो आपके पास बहुत सारे पेशेंट्स आते होंगे और बहुत सारी मैरिड कपल्स आते होंगे, राइट? बहुत सारी प्रॉब्लम, तो क्या मेजर 2-3 रीजन्स हैं क्यों, एंड एक्चुअली 2-3 मेजर रीजन्स बताओ कि क्यों लोगों को कॉन्डम्स यूज़ नहीं करना है, दैट इज़ वन। क्या लोग बोलते हैं, बिकॉज आई एम श्योर they used to come to you, they would be coming to you and telling you that mera partner nahi use kar raha, kyun nahi kar raha, to kya reasons hain kyun nahi kar raha, and tell me after this and tell me one of the weirdest reasons which you've heard, both the reasons I know.
I think pehli baat to ye hai ki fetishization hai ki doing it raw is better, you know, logo ke dimag mein ye bhara hua hai ki condom se kharab ho jata hai ya condom se maza nahi aata, kya kisi ne mujhe dm likha tha ki अगर मुझे गुलाब जामुन खाने हैं तो पन्नी में डाल के थोड़ी खाऊंगा और समथिंग लाइक दैट, लाइक दैट्स द वे पीपल थिंक ऑफ इट, यू नो, इंस्टेड ऑफ
ओके दिस आई हैव हर्ड अ लॉट, वैसे बाय द वे कि अनप्रोटेक्टेड करते हैं तो ज्यादा मजा आता है, प्रोटेक्टेड करते हैं तो मजा नहीं आता, दिस इज व्हाट द बेसिक लोग जो बोलते हैं, दैट इज वन।
हां बट आई थिंक यू नो इफ यू आर सेफर तो ऑटोमेटिकली मजा ज्यादा आएगा ना, दिमाग में स्ट्रेस नहीं होएगा। दूसरा, एक्चुअली काफ़ी लोगों को इस बात से प्रॉब्लम होती है कि द एक्ट ऑफ पुटिंग ऑन अ कॉन्डम इन द मिडल ऑफ सेक्स, काफ़ी लोग का फ्लो टूट जाता है, लोगों को ये लगता है, तो उसकी वजह से दे लूज देयर इरेक्शन समटाइम्स। तो इसमें हम लोग ये एडवाइस करते हैं जनरली कि मेक पुटिंग ऑन द कॉन्डम अ पार्ट ऑफ योर फोरप्ले, आप दोनों पार्टनर्स मिलके करो, ये नहीं कि एक कोने में खड़े होकर शर्म में ऐसे कॉन्डम चढ़ा रहा है, जैसे जनरली ऐसे ही होता है, आप उसको फोरप्ले में इंक्लूड कर लो, आप अपने पार्टनर के साथ उसे इंक्लूड कर लो, तो उससे ये प्रेशर हट जाएगा कि कोई मतलब जल्दी से काम खत्म करके आ जाना है। एंड
और यू कैन यूज फीमेल कॉन्डम्स,
इंटरनल कॉन्डम्स बहुत प्रैक्टिकल होते नहीं है, यू कैन पुट इट इन बट आई डोंट नो अ लॉट ऑफ पीपल हु हैव बीन वेरी हैप्पी यूजिंग देम, ऑप्शन मतलब इफ इट वर्क्स फॉर समबडी ग्रेट, but
because female condom can be inside body for like couple of hours,
ha aap sex se pehle insert pehle kar sakte ho,
right? agar kisi ko agar ye problem hai to they can use it,
ha but thoda clunky hota hai, matlab kuch log uncomfortable hote hain uske
saath, I wouldn't know, mujhe to ye abhi 8 hours tak rehta hai body mein, yehi mujhe bhi last podcast mein pata chala tha, to I'm just smoking in it, kya thoda mujhe bhi pata aisa lagna chahiye kahin kahin,
maine khud try kiya use karne ko, mujhe nahi samajh mein aaya, like it just didn't work for me, I was like felt strange,
weird, yeah.
And also I think maybe it's similar for somebody who has a condom, because you know it might feel strange, it's a new sensation, to wo us newness ki wajah se log hesitate karte hain. Another big thing to remember is latex allergy bhi bahut hoti hai logon ko, to uski wajah uske response mein hamare paas latex free condoms bhi aate hain ab. With all of this said, all of your reasons put aside, you do need to use condoms. The Bill and Melinda Gates Foundation, उन्होंने 2006 या 2016 में, I'm forgetting which year, एक competition launch किया था to make sexier condoms, और उसका prize money $1 million था. उसका हुआ क्या आगे मैंने follow up नहीं पढ़ा, but there are people working on making condoms sexier so people enjoy them more.
Okay, but what's the weirdest reason you have heard that why people don't use condoms? कोई partner आगे किसी ने तो बोला होगा कि यार ये
नहीं, बहुत simple reason, मजा नहीं आता. मैंने कुछ अनोखा नहीं सुना है इस डिपार्टमेंट में, जनरली बहुत अनोखी चीजें सुनती हूँ, इस डिपार्टमेंट में नहीं सुना शायद।
कभी भी नहीं, कुछ भी नहीं,
नहीं यही सब बोलते हैं कि प्लेजर, प्लेजर इज द मेन थिंग पीपल साइड. साइज का इशू बहुत होता है एक्चुअली इंडिया में. इंडिया में साइज में वैरायटी नहीं है बहुत ज्यादा. आप ये जाके नहीं बोल सकते लार्ज कॉन्डम दो या स्मॉल कॉन्डम दो. फॉरेन में इफ यू गो अब्रॉड आपको अच्छे से मिल जाएंगे, विच इज नॉट ग्रेट बिकॉज कॉन्डम का साइज बहुत इंपॉर्टेंट होता है. इफ इट्स टू लार्ज तो वो फट सकता है, इफ इट्स टू स्मॉल, सॉरी इफ इट्स टू स्मॉल तो वो फट सकता है, एंड इफ इट्स टू लार्ज तो वो स्लिप ऑफ कर सकता है. और लोगों को वैरायटी में दिक्कत होती है. आई हैव हैड अ फ्यू डीएम्स अबाउट दिस सिंस यू मेंशनिंग दैट, उससे याद आया, बट अजीब कुछ नहीं सुना है अभी तक.
भी नहीं. मैं एक बार आई वॉज इन सिंगापुर, ओके, एंड सिंगापुर में मैं आई थिंक क्लार्की करके कोई एरिया है वहाँ उसके पास में था शायद, एंड आई एंटर्ड लाइक अ सुपर मार्केट विच इज़ अ वेरी नॉर्मल सुपर मार्केट, एंड क्लार्की इज लाइक अ प्लेस वेर लाइक नॉट ऑफ नाइट क्लब्स एंड स्टफ लाइक दैट, राइट. आई थिंक 7-Eleven ही था वो, आई डोंट रिमेंबर, आई थिंक 7-Eleven था कुछ था. फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ आई सॉ लाइक अ होल aisle of there were like at least 50 different brands,
wow,
with like 50 different options of what not. There are like neon condoms, there are like glow in the dark condom. I was like, what is going, this is like a buffet. With in our country we know 5 flavors, like that is what that
kala khatta paan.
Maine dekha hai,
maine kala khatta dekha hai,
kya baat
kisi ne mujhe photo bheja tha. I was like, ye hai इनोवेशन देख रहे हैं आप.
But usually flavored condoms are for oral sex, right?
Yes, because there are no taste buds in the vagina or on the penis. But you know, in Bangkok there is a condom cafe. आपको एंड में ना चेंज के साथ, जैसे जनरली आपको चेंज मिलता है वहाँ पे, वो कॉन्डम्स देते हैं आपको. दिस लाइक इट्स डेकोरेटेड विद कॉन्डम्स एंड ऑल ऑफ दैट. आई वॉज रिसेंटली इन न्यूयॉर्क एंड आई वॉज एट द म्यूजियम ऑफ सेक्स, और वहाँ पे मैंने ऐसे वही दीवार देखी कॉन्डम्स की ना. इवन आई वॉज ब्लोन अवे इवन विद ऑल ऑफ द वर्क दैट आई डू इन दिस स्फीयर. मजा आया देख के.
यू नो आई वॉज दिस इज आई वॉज इन प्राग आई गेस. सो प्राग में ओल्ड टाउन करके एक जगह है जहाँ पे बहुत टूरिस्ट होते हैं, राइट. हैव यू बीन देयर?
नो आई हैवंट, बट आई हैव
नोन. सो ओल्ड टाउन है, तो वहाँ पे एक क्लब है बहुत फेमस है, आई एम फॉरगेटिंग द नेम. दे हैव इनसाइड द बाथरूम देयर इज कॉन्डम, लाइक ऐसा एक छोटा सा वेंडिंग मशीन टाइप है जो उसमें कॉन्डम, फ्री कॉन्डम्स फॉर एवरीबॉडी. उसके ऊपर बड़ा सा बोर्ड लगा हुआ है, राइट. We don't have problem if you do sex here, just do it safely.
I love that. In fact, Oxford में another thing that was very shocking for me, हमारे college में जैसे class reps होते हैं ना, तो हमारे college welfare reps होते थे, just to make sure that everybody is having good mental and physical health. कोई problem होती थी आप welfare rep के साथ पास जा सकते हैं. And they were stocked with condoms and dental dams at all times. Pregnancy test kits, condoms, dental dams, ये सब आप welfare rep से ले सकते थे, which created a very safe environment कि अगर आप stress में हैं, you can always go there. College में, you know, in certain places condoms रखे रहते थे that in case you do need to go and use it, it's available. शर्म नहीं आनी चाहिए जाके खरीदने में.
It's very open outside, yeah, like in a couple of countries. Okay. Last two questions. Abortion. Do you think abortion in India is illegal, right?
It's extremely legal.
It's legal.
Very legal.
Okay.
Up to 20 weeks, no questions asked. आप अपने डॉक्टर के पास जा सकते हैं. सिर्फ और सिर्फ आपके कंसेंट की जरूरत है. भाई, मामा, चाचा, बॉयफ्रेंड, पति, किसी की जरूरत नहीं है. अपना कंसेंट. You go and ask as long as you're over 18 years of age. And 20 weeks तक आप करा सकते हैं.
तो कोई आपसे कोई सवाल नहीं पूछेगा, कोई जवाब
नहीं, मतलब पूछेंगे सवाल, बेसिक पूछेंगे आपकी.
नहीं मतलब सवाल as in ये तो नहीं,
कंसेंट वाले सवाल नहीं पूछेंगे
कि पापा को लेके आओ, मम्मी को लेके आओ,
अगर ऐसा कर रहे हैं तो वो इलीगली कर रहे हैं.
ओके.
काफी डॉक्टर्स ये बोलते हैं कि आप किसी और को साथ में लेके आइए, बिकॉज यू नो इट्स एन इंटेंस एक्सपीरियंस. तो आपके पास सपोर्ट के लिए कोई रहे, आप एनेस्थेटाइज्ड होते हैं प्रोसीजर में, उसके बाद आपके साथ कोई रहे, इसलिए बुलाते हैं. बट प्रोसीजर पेपर वर्क वाइज कोई जरूरत नहीं है. अगर उसमें बुला रहे हैं तो गलत बात है.
ओके. एंड व्हाट आर द वेज दैट इफ समबडी फील्स लाइक ओके अनवांटेड प्रेगनेंसी, व्हाट आर द वेज यू कैन स्टॉप दैट? फर्स्ट इज अ कॉन्ट्रासेप्टिव पिल, देन व्हाट?
सो इफ
जैसे आप भूल गए 3 विद इन 72 व्हाट अनवांटेड 72 आई पिल, ऑल ऑफ दिस, इन लोगों ने दे मेड इट easier for everybody to understand. So if 72 hours mein if you're not taking a contraceptive pill, then what are the ways that you can avoid pregnancy?
So let's think of it like this. You and your friend like each other. Theek hai? Aapko lag raha hai scene banne wala hai. आपने सीन बनने से पहले उसको फ्रेंड जोन कर दिया, ये हो गया कॉन्ट्रासेप्टिव, कुछ होने से पहले ही आपने प्रिवेंट कर दिया. सेकंड हुआ कि यू एंड योर फ्रेंड आर हैविंग अ सीन बोथ इनटू ईच अदर, किस पे सो गया, किसके बाद आपको लगा अरे बाप रे नहीं 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 चलना है एंड यू ब्रेक अपार्ट. अब इमरजेंसी हो गई है, चीज़ें हो चुकी हैं, बट यू डिसाइडेड टू एंड इट देयर. ये हो गया इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव. इसमें कुछ टाइम के अंदर इफ़ यू हैव अनप्रोटेक्टेड सेक्स विद इन 72 आवर्स आप ओव्यूलेशन को रोक सकते हैं, यानी कि एग के रिलीज को रोक सकते हैं. इसको ऐसा समझ सकते हैं कि अनारकली को दीवार में चुनवा दो, यू नो अनारकली बाहर नहीं आएगी तो सलीम कैसे मिलेगा. जो ये पिल्स होती हैं ये आप पूरे महीने खाते हैं, और इनके नॉन कॉन्ट्रासेप्टिव बेनिफिट्स भी होते हैं. आई हैव एंडोमेट्रियोसिस, मैं खाती हूँ इसलिए सो दैट मुझे पीरियड पेन कम हो और मेरा पीरियड एंडोमेट्रियोसिस मैनेज हो जाए. फिर हुआ कि अब You're into your friend, scene चल रहा है, अब sex हो गया है, अब क्या करना है, अब breakup करना है. तो breakup करना हुआ is abortion. अब abortion के भी दो तरीके होते हैं, medical abortion या surgical abortion, depending on आपकी medical history plus age of the pregnancy. आपका doctor will help you decide कि medical option है आपका या surgical है. medical है तो कुछ दवाइयाँ खा के abortion होता है, it feels like a period, like a very heavy period, cramping होती है, medical supervision में करना चाहिए because इट कैन बी फेटल, क्योंकि प्रेगनेंसी कभी कभी यूट्रस के बाहर भी इम्प्लांट हो सकती है, इसको हम एक्टोपिक प्रेगनेंसी बोलते हैं. तो इस केस में ये फेटल हो सकता है, दैट्स व्हाई आई ऑलवेज डू इट अंडर द सुपरविजन ऑफ अ डॉक्टर. फार्मेसी से ऐसे जाके लेना नहीं है. दूसरा होता है सर्जिकल, उसमें हम कुछ मेडिकेशंस देते हैं सो दैट यू डोंट फील पेन, एंड देन सर्जिकली वी कैन रिमूव द प्रेगनेंसी.
आई हैव अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट डू गाइस डोंट नो अबाउट ऑल ऑफ दिस?
Any of them. Neither do the girls actually for that matter.
Yeah, because you know, I think this is such a crucial knowledge that people should know, because XYZ reason, anytime it can happen with you, your partner, your sister, your friends, anybody, right? And it should be someone at least who can be like a support system, because tumhare sath kuch nahi ho raha ab. Right? It has happened with some, because of you or because of someone else, it has happened. So now, you should be the support system. So what should be the way for a guy to like, okay, now what?
Firstly, educate yourself on the laws. Because if you're not doing it, then you can exploit yourself. Your friend, your sister, whatever. Laws ko acche se samjhe aur dusro ko bhi
batae. Are there doctors jo darate hain, judge karte hain, questions poochte hain?
Maine suna bahut hai. Kaafi DMs mein maine suna hai. But kya karein yaar, society hi aisi hai. Matlab doctors are a product of the society.
I'll tell you, one of my friends, okay? He went to a psychologist and then a psychiatrist. Okay. Talked about that, hey, I am gay and uski waise aisa aisa ho raha hai, mujhe society ko accept nahi kar raha, ye kar raha. The doctor started judging that person. And the doctor started suggesting, XYZ, arre nahi nahi, ye nahi hota, wo nahi hota, aap try karo, aap ye try karo. And I'm like, you're a psychiatrist and a psychologist. Ye aa raha hai binda, aap kya isliye ki mereko mental stress ho raha hai life mein, kyunki meri family aur wo log accept nahi kar rahe. तुम इनके साथ ऐसा कर रहे हो, एंड देन उसको पिल्स दिए कि आपको ऐसे थॉट्स नहीं आएंगे, एंजाइटी नहीं होगी, रात को सो जाओ. सो इफ दिस कैन हैपन देन आई कैन बिलीव एनीथिंग कैन हैपन.
अभी मेरे पास एक लड़की का मैसेज आया था कुछ टाइम पहले. और गायनेकोलॉजिस्ट हैड टोल्ड हर कि बेटा तुम बहुत एम्बिशियस हो, इसलिए तुम्हारे शरीर में टेस्टोस्टेरोन बढ़ गया, इसलिए तुम्हें PCOS हो गया. एम्बिशन कम कर लो, ये सब क्या करियर. शी आई थिंक शी वॉज अ बैंकर, इन्वेस्टमेंट बैंकर और समथिंग. क्या ये सब दौड़ती रहती हो फोन उनके पीछे, बैंकिंग वैंकिंग छोड़ दो, ये सब शादी वादी कर लो. वो उम्र हो गई है 32 साल की हो गई हो, PCOS एम्बिशन की वजह से हुआ है.
रियली
आई टू जस्ट बॉगल्स माई माइंड क्या क्या बोला जाता है लोगों से.
व्हाट्स द वियर्डेस्ट डीएम यू हैव गॉटन
आज? आते हैं यार, बहुत अजीब अजीब से आते हैं. आई थिंक रीसेंट वन, जिसके बाद माई टीम मेंबर हु हैंडल्स माई ई मेल, शी कॉल्ड मी एंड शी इज लाइक, मैं ये नहीं करने वाली हूँ, मैं 2 दिन ई मेल से छुट्टी चाहिए. समबडी हैड रिटन इन द बायो कि इज नॉट द बायो सॉरी द सब्जेक्ट जस्ट सेड, इज इट ओके टू बैंग योर मॉम? And then the body of the email said, I really want to have sex with my mother. No, I like to have sex with my mother. She and I are okay with it. but you know society is not accepting, what do I do, or something like that. Like, it was basically that they were in a consensual sexual relationship according to this email, and he didn't know if it's healthy or safe. And a lot of times main reply karti hu,
let's just pretend that I didn't hear this.
A lot of times I reply and I say sorry, I can't take personal queries unless it's a consultation. Isme maine reply hi nahi kiya kyunki aksar samajh mein nahi aata hai troll kar rahe hain ki nahi yaar, ye sach mein hai sawal ki nahi.
I didn't hear this.
Just, but I get some variation of this once every 2 months, huh?
Okay, what is happening?
The world is a messed up place. Beautiful messed up place.
It's crazy. It's really, this is a thing?
Mm-hmm.
Oh my
incest
god.
Incest porn is like ridiculously popular in India, no? I think Pornhub came out with some data. Bhabhi porn is very popular.
Bhabhi porn is the most popular thing in the country.
Other incest was also top.
Yeah, yeah, I know. So the biggest return porn is Savita Bhabhi in India.
Yeah.
And from return, then they have videos, like obviously the audio visual version of it.
Achha, ye bhi hota hai?
All of it.
Wow.
Sara ke sara. So no, India mein one of the most researched or one of the most searched categories is. By the way, 50% of internet consumption is porn.
Yeah.
And out of that 50%, highest is this.
Bhabhi porn.
In India specifically. That's insane.
Sounds like a band name, Bhabhi porn.
Yeah, and US met stepsister or stepbrother.
Oh God.
So US is stepsister or stepbrother, India is Bhabhi. I mean, technically, I don't know what to call it, but similar sort, just different society angles.
Just incest, man. All kinds of incest. People are into weird stuff.
It's ridiculous.
Yeah.
I mean, whatever. No. But for on a serious note, these are the, I mean, all of these things will start reducing if we educate and talk about all of these things very openly. I mean, if people know the right way to desire, the right way to do certain things, the right way to actually feel themselves and make other person feel certain way, I think bohat problems kam ho jayegi.
Be healthier and happier in their bodies.
That's how you call it. The easier version of what I just said.
No, but you know, if you think about it, jitna taboo hota jaye topic, utna uske bare mein misinformation phailegi.
Yeah.
My example is always Area 51 in the US. Area 51, they've just shrouded it in secrecy. Ab wahan aliens rehte hain.
और देखिए एलियंस अभी वहां
उसका एक्सरे भी हुआ है, एलियंस निकाले भी है उन्होंने, यू नो. सो जस्ट टॉकिंग अबाउट थिंग्स टेक्स अवे अ लॉट ऑफ पावर फ्रॉम देम एंड नॉर्मलाइजेस इट फॉर एवरीबॉडी.
ट्रू. सो नॉर्मलाइजिंग वन लास्ट थिंग, बिकॉज वी नो दैट वन ऑफ द मोस्ट वॉच्ड कॉन्टेंट फॉर यू वॉज दिस, एंड आई थिंक इट्स रियली इंपॉर्टेंट बिकॉज वी वर जस्ट टॉकिंग अबाउट मेन. That was 5 surprising facts about penis. Okay, so tell us, and that's how we end. That's very important for everybody to know because my 50% audience is men.
5 surprising facts about the penis. Babies can have erection while inside the uterus. Like when somebody is pregnant with a male child, that baby can have an erection. Bahut baar matlab dekha gaya hai on ultrasounds, on x-ray, not x-rays, but yeah.
Inside the body.
Yep. Oh. It's just normal sexual development. The body is understanding, achha, ye aise hota hai, ye waise hota hai. It's not sexual.
Okay.
The baby is not capable of sexual thoughts at that point. But it happens.
Okay, that's one.
Number two, penile lengthening surgeries are not
good, bad, what? Come on, give it a word.
I mean, they can cause problems. They can be problematic. They're not the most successful surgery in the world. Wo ek dedh inch zyada badh jayega, bahut zyada fark nahi padne wala hai. Average penis size globally is between 5.1 to 5.5 inches. Not what people this is erect penis. Not what people think is 7 inches normal hai. Ek ladki ne bahut badhiya reel banayi thi ki usne apne muh ke bagal mein ek inch tape khola tha 12 inch. And she's like, kya karoge itne ka? Which is true. What else? 5 surprising facts. Well, मैं बहुत पुरानी रील है यार, मुझे याद नहीं आ रहा है.
ठीक है, बताओ दो तीन मज़ा और. प्रेशर है, देखते हैं हम आपका कंटेंट याद रखती
हूँ. मैं डॉक्टर हूँ, मैं रट्टा मार के आती हूँ सब चीज़, मुझे कोई वो नहीं है. What else? The penis can point in many different directions. That's normal. It's हर किसी का पेनिस सीधा नहीं होता है, कुछ का अपवर्ड्स पॉइंट करता है, कुछ का साइडवेज पॉइंट करता है, कुछ का डाउन पॉइंट करता है, देयर इज लाइक लॉट्स ऑफ डिफरेंट डायरेक्शंस, ऑल नॉर्मल वेरिएशंस. और क्या, हाँ, सम पीपल कैन हैव अ कंडीशन वेयर अगर उनका फोरस्किन सही से स्ट्रेच नहीं हुआ है, इफ दे आर नॉट सर्कमसाइज्ड, तो फोरस्किन फंस सकता है, चिपक जाता है बेसिकली पेनिस पे. इसको हम बोलते हैं फाइमोसिस. इसको बहुत अग्रेसिवली लोग ठीक करने की कोशिश करते हैं, एंड दे कीप पुलिंग द पेनिस विदाउट द फोरस्किन, सॉरी, विदाउट लर्निंग द प्रॉपर टेक्निक ऑफ इट. और इसकी वजह से अक्सर जोर से फोर्सफुली वो पेनिस पीछे, फोरस्किन पीछे खींच लेते हैं, और फिर फोरस्किन वहाँ अटक जाता है, देन इट कांट गो बैक. इसको हम बोलते हैं पैराफाइमोसिस. दीज आर बिग प्रॉब्लम्स दैट अ लॉट ऑफ पीपल कम टू द हॉस्पिटल फॉर. यू कैन ब्रेक योर पेनिस. There is no bone inside the penis in humans. In animals, there is.
But you can have fracture.
If so, basically, जब उसमें blood भर जाता है, so it's very like rigid. And अगर उसपे बहुत तेज blunt force लगे, चाहे masturbation के through, चाहे sex के through, you can break it, and it needs immediate surgery. My favorite penis fact. One of my favorite penis facts. There's a phallological museum in Iceland. So it's the museum of penises. And they have a penis over there, which is a blue whale ka penis ka tip. And that's 6.7 feet long. Tip.
Tip.
Tip. Yeah, fun stuff.
For you.
I have a lot of really fun penis facts in my book. Another very interesting one in the animal kingdom is that ducks ka penis jo hota hai, wo corkscrew shape mein hota hai. एंड डक्स का वजाइना वो एंटी कॉर्कस्क्रू शेप में होता है, बिकॉज डक्स आर वेरी रेपी एनिमल्स. सो इवन नॉन कंसेंशुअली दे विल रेप फीमेल डक्स, एंड डक वजाइना इज काइंड ऑफ इवॉल्व्ड टू बी लाइक दिस उसके उसमें. तो पीनस वजाइना, सॉरी, डक पीनस इज, पीनस वजाइना, डक पीनस इज इवॉल्व्ड टू बी लाइक दिस इन रिस्पॉन्स टू दैट. इट्स वेरी बिजार. I have a whole chapter on all of this.
In this book?
In my book.
You're writing another one?
I'm writing another one.
What's the name of the another book?
So this one, iska hum ek children's version nikal rahe hain, because this is probably for 16 and above type people. Iska hum ek children's version nikal rahe hain, which is one thing happening. And the second thing that's happening is I'm working on a book on something secret.
Okay. Wow. Wow. Really? Okay.
Abhi contract signed hua.
Tell me in one line, and that's how we end, why should people read this book?
Because it contains everything nobody tells you about your body. Also the title of my book.
Alright. Thank you so much. It was fun having you. This really is long fun. Pending. Thank you so much for coming here. Thank you so much for watching this episode till the end. हमें बताओ कि और कौन से ऐसे लीडर्स हैं जिनको आप देखना चाहते हो हमारे एपिसोड पे, कौन सी ऐसी स्टोरीज़ हैं, कौन से ऐसे लोग हैं जो आपको लगता है बहुत इंसाइटफुल हैं, लेकिन उनसे ज़्यादा बातें नहीं हुई है, उनसे ज़्यादा अच्छे क्वेश्चंस नहीं पूछे गए. तो आप हमें बताओ कि वो कौन से ऐसे लोग हैं, हमें गेस्ट के सजेशंस दो, हम उन्हें लेके आएंगे. और आप हमें क्वेश्चंस बताओ कि क्या आप क्वेश्चन चाहते हो उनसे पूछना, हम उनसे वो पूछेंगे, ताकि आपको एक बेहतर एपिसोड मिले, हर किसी को उनसे सीखने को मिले, और हम सब साथ में इस कंट्री को ग्रो करें. क्योंकि एक कॉन्वर्जेशन इनफ है किसी की लाइफ चेंज करने के लिए. अंटिल द नेक्स्ट एपिसोड, कीप फिगरिंग आउट, एंड बिफोर यू लॉग आउट, यू नो दैट यू हैव टू शेयर दिस विद एटलीस्ट वन पर्सन जिसकी लाइफ में एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा.